यशवर्धन का इंटरव्यू कन्फर्म होने के बाद प्रतीक शर्मा ने अपनी एक टीम को उसके घर पर भेज दिया। यशवर्धन के घर पर इंटरव्यू की तैयारियां चल रही थी। सर, मुझे आपके घर का वो हिस्सा चाहिए जहां पर लाइटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो, कैमरामैन ने यशवर्धन से कहा। यशवर्धन और अनंत देसाई उन्हीं के साथ वहां पर मौजूद थे। आप इंटरव्यू लिविंग रूम में या हमारे घर की लाइब्रेरी में ले सकते हैं। वैसे लाइब्रेरी हमारी पसंदीदा जगह है, आप वहां हमारा इंटरव्यू लेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, यशवर्धन ने जवाब दिया। लाइब्रेरी घर का एक बंद हिस्सा होती है, आर्टिफिशियल लाइटिंग हम अरेंज कर लेंगे, लेकिन फिर भी चीजें उतनी अच्छी निकल कर नहीं आएगी, कैमरामैन ने जवाब दिया। तभी उसकी असिस्टेंट ने सुझाव देते हुए बीच में बोली, आपको लाइब्रेरी में ही तो इंटरव्यू देना है, हम ऐसा करते हैं कि आपके पीछे एक लाइब्रेरी का सेटअप दे देते हैं, इससे लोगों को लगेगा कि आप लाइब्रेरी में ही इंटरव्यू दे रहे हैं। उसकी बात सुनकर यशवर्धन हल्का सा हंसा और फिर कहा, आप चाहें तो कहीं और इंटरव्यू ले सकती हैं, लेकिन हमें जनता के सामने ये झूठ नहीं परोसना, हम हमारे घर के स्टाफ को बोलते हैं, वो आपकी मदद कर देगा। यशवर्धन सिंह ने अपने स्टाफ के एक मेंबर को बुलाकर सब कुछ समझा दिया। वो इंटरव्यू लेने वाली टीम की हर तरीके से मदद कर रहा था। यशवर्धन और अनंत देसाई दूर से खड़े होकर उन लोगों को देख रहे थे। सर, एक बार फिर से सोच लीजिए, इंटरव्यू लाइव होने वाला है और अभी तक हमारे पास इंटरव्यू से पूछे जाने वाले सवाल नहीं आए, यशवर्धन ने जवाब में कहा। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों को भेजने के लिए मैंने मना किया था, मैं नहीं चाहता कि एक छोटी सी गलती की वजह से वैदेही के सामने मेरी इमेज खराब हो। आपने त्यागी जी को बता दिया है ना इस इंटरव्यू के बारे में? नहीं देसाई जी, लेकिन बता दूंगा, जब से मुझ पर हमला हुआ है तब से मुझका एक बार भी कॉल नहीं आया, जबकि वो अच्छे से जानते हैं कि इन सब के पीछे कौन है, यशवर्धन ने परेशान स्वर में कहा। यशवर्धन और अनंत देसाई आपस में बात कर रहे थे, तभी यशवर्धन के फोन पर पार्टी अध्यक्ष रामचरण त्यागी का कॉल आया। लगता है त्यागी जी कुछ और साल जीने वाले हैं, देसाई ने हल्के मजाकिया तरीके से कहा। जवाब में यशवर्धन ने मुस्कुराहट दी और दूसरी तरफ जाकर त्यागी जी का फोन उठाया। उसने देसाई को भी अपने पीछे आने का इशारा किया। इशारा पाकर वो भी उसके पीछे दूसरे कमरे में आ गया। फोन स्पीकर पर था जिससे अनंत देसाई भी त्यागी की बातों को सुन सकता था। उनके फोन उठाते ही त्यागी जी ने उसका हेलो बोलने का भी इंतजार नहीं किया और तुरंत बोल पड़े, इतने बुरे दिन कब से आ गए कि इन न्यूज वालों के जरिए पता चल रहा है तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है, पूछना तो दूर की बात है, कम से कम एक बार बता तो देते। त्यागी जी की आवाज से ही पता चल रहा था कि वो गुस्से में थे। यशवर्धन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। कुछ सेकंड शांत रहने के बाद उसने जवाब में कहा, न्यूज चैनल वालों से तो आपको बहुत सी बातों का पता चला होगा, हमारा इंटरव्यू, परसों रात हम पर हुआ हमला, हम राघवेंद्र से बात करने ही वाले थे, लेकिन, बोलते हुए त्यागी जी चुप हो गए। लेकिन क्या, और आप बात करने वाले थे कब? जब हमारा यहाँ से जनाजा उठ रहा होता तब? त्यागी जी, अब इस बात की दुहाई तो बिल्कुल मत दीजिएगा कि पापा के जाने के बाद आपने हमें उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। सच कह रहे हैं, हमें एक खरोच भी आती तो हमारे पापा पूरा घर और आपकी पार्टी को सर पर उठा लेते, वहां इतनी शांति छाई है क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। यशवर्धन के कठोर शब्दों को सुनकर त्यागी जी का गुस्सा शांत हुआ। यशवर्धन की बातों से साफ नजर आ रहा था कि वो काफी गुस्से में था। वो इस वक्त मुंबई में मौजूद नहीं है, त्यागी जी ने धीमी आवाज में कहा। वो तो मुंबई में नहीं है, लेकिन आप तो हैं। एक बार फिर आपने हमारा हालचाल पूछना तक जरूरी नहीं समझा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंटरव्यू के दौरान हम पार्टी के सारे राज खोल देंगे या हम पर हुए हमले के पीछे असली शख्स का नाम बता देंगे, तो आपको बता दें कि हम इंटरव्यू के दौरान आपकी पार्टी पर आंच नहीं आने देंगे, निश्चिंत हो जाइए। यशवर्धन की बातों से त्यागी जी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उन्होंने यशवर्धन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। त्यागी जी का फोन कटते ही देसाई ने कहा, काफी अच्छे से संभाला है आपने त्यागी जी को। भले ही पापा के होते हुए मैंने इतने साल तक पीछे से काम किया, लेकिन अच्छे से जानता हूँ यहाँ किसकी कमजोर नस कौन सी है और किस वक्त दबानी है, यशवर्धन ने शांत तरीके से जवाब दिया। सच कहें तो हमें त्यागी जी से ये उम्मीद नहीं थी, उन्होंने तो आपका हालचाल तक पूछना जरूरी नहीं समझा। जरूर पूछेंगे देसाई जी, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये हमारे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए घूमेंगे, फिर हालचाल तो बहुत छोटी चीज रह जाएगी। यशवर्धन के चेहरे पर चमक और शब्दों में मजबूती थी। फिर उसने अपनी बात को बदलते हुए कहा, वैदेही जी के आने में कितना वक्त है? उसके पूछने पर अनंत देसाई ने घड़ी की तरफ देखकर बोला, इंटरव्यू शाम के 5 बजे होने वाला है और 3 बज रहे हैं, लगभग 1 घंटे बाद वो यहाँ पर होंगी। फिर तो हमें तैयार होना शुरू कर देना चाहिए। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं तो एक बार हुक्म कीजिए, आपको क्या चाहिए, अगले कुछ मिनट में वो आपके सामने होगी। हमारे पास वो सब चीज मौजूद है जो हमें चाहिए, और जो चीज हमारे पास मौजूद नहीं है वो अगले 1 घंटे में हमारे सामने पहुंच जाएगी, यशवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा और तैयार होने के लिए अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद देसाई जी भी नीचे लिविंग रूम में आ गए जहां पर इंटरव्यू के लिए सेट किया जा रहा था। शाम के 4 बज रहे थे। यशवर्धन के घर पर इंटरव्यू की सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी थी। बाकी की टीम यशवर्धन के घर पर पहुंच चुकी थी, जबकि वैदेही का आना अभी भी बाकी था। यशवर्धन उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसका इंतजार अब खत्म हो चुका था। वैदेही नरगिस के साथ यशवर्धन के घर पर पहुंची। उसने आते ही एक नजर वैदेही की तरफ देखा, जो कि हमेशा की तरह फॉर्मल वेयर में थी। यहाँ हमने उनके आने की इतनी तैयारियां की हैं और ये हमेशा की तरह उसी ऑफिस सूट में पोनीटेल बांध कर आई हैं, यशवर्धन ने वैदेही की तरफ देखकर सोचा। वैदेही के साथ नरगिस भी मौजूद थी। उसने यशवर्धन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए हाथ ऊपर उठाया। उसके ऐसा करने से यशवर्धन का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। नरगिस यशवर्धन से मिलने के लिए बाकी टीम से अलग लग रही थी। जहां सभी नॉर्मल कपड़ों में थे, वहीं नरगिस उन सबसे अलग ब्लैक कलर की फ्लोरल वन पीस में थी। कुछ तो सीखे अपनी दोस्त से, यशवर्धन धीरे से बड़बड़ाया। तुम टीम से पूछकर तुम्हारे लायक कोई काम है तो उनकी हेल्प कर दो, मैं यशवर्धन जी को सब कुछ समझा देती हूँ, वैदेही ने नरगिस से कहा। तुम रहने दो, मैं उन्हें सब समझा दूंगी, तुम अपने सवालों को देख लो, वैदेही के जवाब का इंतजार किए बिना नरगिस यशवर्धन के पास चली गई। नरगिस बहुत इनोसेंट है, कहीं अपनी मासूमियत वो उसे कुछ गलत ना बता दे। मामले को संभालने के लिए वैदेही भी नरगिस के पीछे यशवर्धन के पास गई। हेलो, उन दोनों के पास आते ही यशवर्धन मुस्कुराकर बोला। हेलो सर, नरगिस ने वैदेही को बोलने का मौका नहीं दिया, उससे पहले ही खुद बोल पड़ी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ आपके कंफर्ट के हिसाब से होगा। आप चाहें तो सवालों को पहले पढ़ भी सकते हैं, ताकि आपको जवाब देने में दिक्कत ना हो। अपनी बात खत्म करके नरगिस ने वैदेही की तरफ देखा, जिसके हाथ में सवालों की लिस्ट थी। उसने झट से उससे वो पेपर छीना और यशवर्धन की तरफ बढ़ाने लगी। नरगिस की इस हरकत पर वैदेही, यशवर्धन और नरगिस दोनों को घूर कर देख रही थी। उसके ऐसे देखने से यशवर्धन के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन उस जनता के साथ गलत होगा जो हमें देखने के लिए अपना टाइम निकालकर टीवी स्क्रीन के आगे होगी, यशवर्धन ने सादगी से कहा और वो पेपर लेने से साफ इनकार कर दिया।
उसके ऐसा करने से नरगिस उससे और भी इम्प्रेस हो गई। हाउ इम्प्रेसिव, सब लोग आपकी तरह नहीं होते, लेकिन हम औरों से अलग हैं। अगर आप दोनों की बातें हो गई हों तो अब हम इंटरव्यू से जुड़ी हुई कुछ बातें कर लें, वैदेही ने सख्त आवाज में कहा। जी बिल्कुल, चलिए हम वहां बैठकर बात करते हैं, बोलते हुए यशवर्धन ने शूटिंग एरिया से कुछ दूर लगे काउच की तरफ इशारा करके कहा। हाँ, वैसे भी यहाँ काफी शोर है, वैदेही के हाँ कहते ही यशवर्धन सोफे की तरफ बढ़ने लगा। वैदेही उसके पीछे जाने की बजाय नरगिस की तरफ मुड़ी और उसे घूरते हुए कहा, अब तुम चुप करके एक कोने में बैठकर सब कुछ देखोगी, क्या बकवास कर रही थी उसके सामने? लेकिन मैं तो, मैंने कहा ना कुछ लेकिन वे की नहीं, वैदेही ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि नरगिस की वजह से मामला उसके हाथ से जाए। वैदेही के कहने पर नरगिस टीम के पास चली गई। उसके जाने के बाद वैदेही भी यशवर्धन के पास आ चुकी थी। उसके पास बैठते ही यशवर्धन ने पूछा, कैसी हैं आप? अब मेरी भलाई करने वाले इतने लोग हैं तो मैं कैसे हो सकती हूँ? आज हम प्रोफेशनली मिल रहे हैं तो बेहतर होगा कि प्रोफेशनल बातें ही करें, वैदेही ने जवाब दिया। वैसे आपने हमसे मिलने का ये जो प्रोफेशनल तरीका निकाला है वो हमें पसंद आया, लेकिन आपके पास हमारे नंबर थे और हमने आपसे कहा भी था कि हम फिर मिलेंगे, आप चाहती तो हमसे डायरेक्ट मिलने आ सकती थी, इसके लिए ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी वैदेही जी? जैसे ही यशवर्धन ने अपनी बात खत्म की, वैदेही की आंखें बड़ी करके हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। यशवर्धन ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, अब इसमें हैरान होने जैसा कुछ नहीं है, हम क्या जानते नहीं कि आप हमसे बात करना चाहती थीं, इसीलिए ये इंटरव्यू अरेंज करवाया, सब जानते हैं आप सिर्फ क्राइम न्यूज़ कवरेज करती हैं, वो भी ज़्यादा इंटेंस हो तो, फिर यहाँ एक पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेने, क्या ये आपके बनाए हुए सो कॉल्ड रूल्स के खिलाफ नहीं है? वैदेही ने तुरंत अपने चेहरे के भावों को बदला ताकि यशवर्धन को उस पर शक ना हो। जी बिल्कुल नहीं मिस्टर सिंह, हमारा चैनल आपका इंटरव्यू लेना चाहता था, आपके इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे रिपोर्टर को सिलेक्ट किया गया था, आपकी तरफ से ये शर्त रखी गई थी कि ये इंटरव्यू वही रिपोर्टर लेगी जो उस रात आपके साथ थी। वैदेही की बातों ने यशवर्धन का मुंह बंद करवा दिया, वो अच्छे से जानती थी कि किससे किस तरह से डील की जा सकती थी। अब अगर टाइम वेस्ट ना करके काम की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अगले आधे घंटे में आपका इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है जो कि लाइव होने वाला है, यहाँ पर की गई शूट 5 मिनट बाद जनता तक पहुँच जाएगी, अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं देना है तो आप उसी वक्त मना कर सकते हैं, इसके लिए आपको डायरेक्ट ना नहीं करनी है, आपको अपने पास पड़ा पानी का ग्लास उठाकर उसी से एक सिप लेना है, तब हम समझ जाएंगे कि इस सवाल का जवाब आप नहीं देना चाहते और हम उसी वक्त ब्रेक लेंगे, वैदेही प्रोफेशनली उसे हर एक बात समझा रही थी। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, फिर तो तैयार रहिएगा मिस्टर सिंह, कहीं ये आपके करियर का पहला और आखिरी लाइव इंटरव्यू ना बन जाए, वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से उठकर टीम के पास चली गई। उसकी बातों से यशवर्धन के चेहरे पर चिंता की लकीर थी, फिर भी उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। अगले 15 मिनट में उसका इंटरव्यू शुरू होने वाला था।